यह सोचो कि आज क्या कर सकते हो। 23 अगस्त को जैन स्थानक गुरमंडी में जनाचार्य श्री ज्ञानचंद्र जी महाराज साहब ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए फरमाया कि आप कल क्या नहीं कर पाए, इसका पश्चाताप न करें। अब यह सोचो कि आज क्या करना है, क्योंकि जो समय बीता जा रहा है वो लौट कर नहीं आएगा। हम जो सामग्री अपने कर्मों के उदय से प्राप्त है उसी में संतोष रखकर उसका उपयोग करना सीख जाइए। जो है नहीं और जिसे पाने की हैसियत भी नहीं है उसे पाने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास सब कुछ है। अगर सब कुछ भी मिल जाए तब भी असंतुष्टि बनी रहेगी। अमेरिका में वर्षों पहले एक व्यक्ति होटल की 15वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। वो ऐसा नोट्स लिखकर गया कि मैंने जब जो चाहा वो मिल गया, अच्छी पत्नी, अच्छी कार, अच्छा भवन, वो सब मिल गया। अब मुझे जिंदगी जीने में कोई रस नहीं रहा है, अतः जीवन समाप्त करके अगले जिंदगी की शुरुआत कर रहा हूँ। अतः सुख दुख दोनों के आते रहने की आवश्यकता है। दुख आने पर ही सुख का महत्व बढ़ता है। संपत्ति का और समय का उपयोग करना सीख जाइए। आज ऐसे ऐसे हैकर हो गए हैं जो आपके बैंक अकाउंट से पैसे अपने खाते में सीधे सीधे ट्रांसफर कर लेते हैं और आपको भी पता नहीं चलता है। अतः भाग्य को सही बनाइए। भाग्य को खिलाने के लिए पर्युषण पर्व के 8 दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मम्मण सेठ ने पूर्व भव में एक संत को उत्कृष्ट भावों से 4 लड्डू बहराए। उनके जाने के बाद लड्डू के बचे दाने खाए तो अतिव स्वादिष्ट लगे। तब उसे पश्चाताप हुआ कि मैं साधु जी के मना करने पर भी लड्डू बहरा दिया। फिर सोचा, महाराज तो अभी स्थानक पहुंचे होंगे, वो खाए उसके पहले लड्डू को ले आता हूँ। और सेठ स्थानक गया और महाराज तो इरियावहिया का ध्यान कर रहे थे। उतने में सेठ लड्डू निकाल कर लेकर चला गया। उसी परिणाम स्वरूप मम्मण के भव में अरबों रुपए की संपत्ति मिली तो सही, पर लड्डू उठाकर ले जाने के कारण मम्मण संपत्ति का उपभोग नहीं कर पाया। अतः अच्छा काम कर दिया तो कर दिया, फिर पश्चाताप मत करो। नवकार मंत्र का घर घर जाप करो। हैकर तो पैसे हैक करता है, आप समय हैक करो, यानी हर व्यक्ति को घर घर नवकार जाप की प्रेरणा करो। उससे समय सार्थक होगा, उससे प्रेरणा देने वालों को भी लाभ मिलेगा और जाप जपने वालों को भी मिलेगा। जैसा कि एक प्रसंग मिलता है, मिथिला नगरी में रहने वाला सेठ धनपाल बहुत धनी था, लेकिन इसके साथ ही बड़ा ही कंजूस भी था। जरूरतमंद की मदद नहीं करता था, बस धन एकत्रित करना ही उसका ध्येय था। एक दिन सेठ ने मटके में भरकर अशर्फियां अपने घर के पीछे वाले बाग में इस आशा से गाड़ दी कि कभी जरूरत पड़ने पर मेरे काम आएगी। सेठ रोज रात को जाता, गड्ढे में से मटका निकालता, अशर्फियां देखता और उन्हें वापस गाड़ देता। एक दिन आधी रात के समय जैसे ही सेठ ने गड्ढा खोदकर मटका बाहर निकाला, वह उसे हमेशा की तरह खोलकर देखा तो वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उस मटके में अशर्फियों की जगह कंकड़ पत्थर भरे थे। कुछ देर बाद सेठ जब वापस होश में आया तब उसने देखा मटके में कंकड़ पत्थर के साथ एक कागज भी रखा हुआ है। धनपाल सेठ ने उस कागज को खोलकर देखा जिसमें किसी अज्ञात व्यक्ति ने लिखा था, सेठ जी, मैंने एक दिन आपको अशर्फियां जमीन में गाड़ते हुए देखा, तब मैंने सोचा ये अशर्फियां आपके तो किसी काम की नहीं है, आप इनका कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं। मैं एक मुसीबत का मारा युवक हूँ, आपकी अशर्फियां ले जा रहा हूँ, इनसे मैं अपना बिजनेस करूंगा। भाग्य ने साथ दिया तो मैं इन अशर्फियों से कुछ कमा सका तो आपको दुगुनी अशर्फियां वापस लौटा दूंगा। पत्र पढ़कर धनपाल सेठ को अपनी अशर्फियां वापस आने की आशा बंधी। सेठ अब भी रोज रात को मटका निकाल कर देखता था इस आशा से कि शायद वह अज्ञात व्यक्ति आज मेरी अशर्फियां वापस लौटा गया हो। इस प्रकार करते हुए 1 वर्ष बीत गया। अब सेठ का धैर्य जवाब देने लगा। सेठ को उस युवक पर संदेह होने लगा कि अब मेरा धन वापस नहीं आएगा, वह व्यक्ति मुझे मूर्ख बनाकर मेरा सारा धन लूट गया। वह जरूर कोई लुटेरा होगा या चोर होगा, फिर भी सेठ मटका देखना नहीं भूलता था। एक बार आधी रात के समय हमेशा की तरह जब सेठ ने मटका निकाल कर देखा तो मारे खुशी की उसकी आंखें चमक उठी। मटके में दुगुनी अशर्फियां थीं, साथ ही एक पत्र भी था। सेठ जी ने पत्र उठाकर पढ़ना शुरू किया। लिखा था, सेठ जी, आपकी अशर्फियों से मैंने व्यापार शुरू किया और भाग्य ने भी मेरा साथ दिया। आज मेरे पास आपकी दया से करोड़ों की संपत्ति है और अपने वादे के मुताबिक मैं आपकी राशि आपको दुगुनी लौटा रहा हूँ। मैंने अपने कमाए हुए धन से कई स्कूल, हॉस्पिटल, अनाथाश्रम बनवाए हैं, साथ ही गरीबों व अनाथों की सहायता में निरंतर अपने धन का सदुपयोग कर रहा हूँ। यह सब आपकी अशर्फियों की सहायता से ही संभव हुआ है। यदि वे मटके में ही भरी रहती तो किसी काम की नहीं थी, उनकी कीमत पत्थर बराबर थी। मैंने उनका उपयोग किया जिसका सुपरिणाम आपके सामने है। अज्ञात युवक का सारगर्भित पत्र पढ़कर उससे शिक्षा लेते हुए सेठ धनपाल ने भी अब उन अशिफियों को जमीन में नहीं गाड़ते हुए उनका सदुपयोग करने का निश्चय किया। वह भी जन कल्याण के कार्यों में लग गया, जिससे उसकी ख्याति देश भर में फैल गई। इस कथा में स्पष्ट है, कंजूस की संपत्ति का उपयोग करके वापस दिया तो उसको भी डबल मिला। आप भी लोगों के समय को हैक करके उपयोग कीजिए। मन सही हो तो अपना भी और सामने वाले का भी सही हो जाता है। अतः मन का दरिया दिल होना जरूरी है। किसी का अहित ही नहीं, हित करना भी सीखो। झालावाड़ रियासत के राजा राजेंद्र सिंह कवि एवं दयालु राजा थे। उनका आलीशान महल सरोवर के किनारे बना हुआ था। एक दिन संध्या के समय राजा अपने महल के सामने वाले बगीचे में बैठकर विद्वानों के साथ साहित्य, काव्य, संगीत आदि का आनंद ले रहा था कि तभी वहां चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। राजा ने मंत्री को बुलाकर इतना धुआं आने का कारण पूछा। जिधर से धुआं आ रहा था मंत्री उधर गया और पता लगाकर महाराज राजेंद्र सिंह से कहा, महाराज, सरोवर के किनारे पर एक गरीब लकड़हारे का परिवार रहता है, धुआं उसी की झोपड़ी से आ रहा है। राजा ने कहा, मंत्री, जाओ उस लकड़हारे को इसी वक्त हमारे सामने उपस्थित करो। राजा का आदेश प्राप्त करके मंत्री लकड़हारे को राजा के पास लेकर आया। लकड़हारे ने डरते हुए राजा का अभिवादन किया। लकड़हारे के अभिवादन के उत्तर में राजा ने उसे तिरछी नजर से देखकर कहा, एक लकड़हारे, इतना धुआं क्यों कर रखा है? देखो, हम सबकी आंखों में धुआं घुस रहा है, जिससे सबकी आंखें जलने लगी हैं, लाल लाल हो गई हैं। इसलिए हमारा आदेश है कि तुम अपनी झोपड़ी इसी वक्त हटाकर कहीं दूर ले जाओ। लकड़हारा राजा का आदेश सुनकर कांपता हुआ हाथ जोड़कर बोला, अन्नदाता, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन वर्षा ऋतु का मौसम होने के कारण ईंधन गीला हो गया, जल ही नहीं रहा है, इसी कारण धुआं निकल रहा है। अन्नदाता, मेरे बच्चे दिन भर से भूखे हैं, आज सारा दिन बरसात होती रही जिसके कारण घर में भोजन नहीं बन पाया। आज तो खाना बन जाने दीजिए, मैं कल अपनी झोपड़ी हटा लूंगा। आज तो आपको सहन करना ही पड़ेगा, हम भी तो सारा दिन आपके यहाँ का शोर शराबा सहते हैं, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। लकड़हारे के इस प्रकार के शब्द सुनकर राजा के दीवान शादीलाल जी, जो उस समय वहां उपस्थित थे, नाराज होकर बोले, जाओ इसकी झोपड़ी को इसी समय यहां से हटा दो। महाराज से किस तरह बात करना चाहिए, इसे इतना भी नहीं आता। यह सुनकर लकड़हारा कांपता हुआ राजा के चरणों में गिर पड़ा। बार बार अनुनय विनय करते हुए कहने लगा, महाराज, दया कीजिए, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसकी करुण पुकार सुनकर राजा ने उसे उठाया और अपने पास बिठाकर दीवान से बोले, दीवान जी, मंत्री को भेजकर राजमहल में हमारे लिए जो बना है वह इसके परिवार के लिए पर्याप्त मात्रा में भेजो, और इस काना भील नामक लकड़हारे को हम अपने साथ बिठाकर भोजन करवाएंगे। राजा के आदेश का पालन करते हुए दीवान जी ने पर्याप्त भोजन लकड़हारे के यहाँ पहुँचाया। उसके बाद महाराज ने आए हुए सभी विद्वानों के साथ लकड़हारे को अपने पास बिठाकर भरपेट भोजन करवाया। उसके बाद राजा ने अपनी निजी धन राशि से झोपड़ी की जगह उसकाना भील के लिए शीघ्र ही एक पक्का मकान बनवाया। राजा की सहृदयता देखकर सभी चकित रह गए और मुक्तकंठ से राजा की प्रशंसा करने लगे। पर्युषण पर्व 24 अगस्त से प्रारंभ हो रहे हैं। सम्राट की तरह अच्छे न्याय युक्त काम करते जाइए। जहां आपका स्वार्थ टकरा रहा हो, वहां भी प्रेम से, सत्य सदाचार से जुड़े रहिए। तारांकन 18 अगस्त का कथा का अवशेष भाग। तारांकन तीसरा गड्ढा उन लोगों के लिए हो जो इस पाप कर्म को अच्छा समझते हैं। इसके साथ ही पूरे नगर में यह घोषणा करवा दी जाए कि कुकर्म करने वाली रानी, दुष्ट युवक एवं फूला मालिन को नगर के चौराहे पर गड्ढे में उतारा जा रहा है। पूरे नगर की जनता उस स्थान पर आए और तीनों के सर पर जूता मारे और थूक कर जाए। राजा की इस आज्ञा का पालन हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। राज कर्मचारियों ने राजाज्ञा का पालन किया। नगर के मुख्य चौराहे पर बीचों बीच आदमकद तीन गड्ढे खोद दिए गए। पास में ही नुकीली कीलों से युक्त जूता रख दिया गया। नगर में भी जूता मारने के लिए आने हेतु घोषणा करवा दी गई। दोपहर को 1 बजे के नियत समय पर रोती चिल्लाती रानी, फूला और दुराचारी युवक को चौराहे पर लाया गया। नगर की सारी जनता वहां एकत्रित थी और उनके पाप के लिए उन्हें धिक्कार रही थी। राजा व सिपाही भी वहां उपस्थित थे। रानी और दुराचारी युवक के हाथ पैर काट डाले गए और पहले गड्ढे में डाल दिया गया। दूसरे गड्ढे में फूला के हाथ पैर काट कर उतार दिया गया। तीसरा गड्ढा खाली था। नगर के लोग एक एक कर आने लगे, जूता उतार कर मारते व थूकते हुए आगे बढ़ने लगे। इतने में एक शराबी उधर से गुजरा, उसने जूता उठाया नहीं, मारा नहीं और उस अपराधी युवक से कहने लगा, शाबाश वीरों, मरना तो एक बार था ही, पर मरने से पूर्व मौज तो उड़ा ही ली, कितना अच्छा किया तुमने। राजा ने सिपाहियों से कहकर उसे भी पकड़कर तीसरे गड्ढे में उतार दिया। उसे भी पहले के अपराधियों की तरह सजा दी गई। राजा ने कहा, पाप करने वाला, कराने वाला और पाप करने वाले की सराहना करने वाला, ये तीनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मेरे नगर की जनता यह बात अच्छी तरह से समझ जाए, इसके लिए मैंने इस तरह की तीन गड्ढों वाली सजा दी है। पाप करने वाला, कराने वाला और अनुमोदन करने वाला तीनों ही दुर्गति में जाते हैं। श्री अरिहंत मार्गी जैन महासंघ सदा जयवंत हो।